नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर दी। इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों की महंगाई राहत बढ़कर 46% हो जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। महंगाई भत्ते में ये वृद्धि उस फॉर्मूले के मुताबिक है जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। सरकार ने बुधवार को विपणन सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ये कदम उठाया है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा MSP में की गई ये सबसे बड़ी वृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गेहूं का MSP बढ़ाने का फैसला किया गया। विपणन सत्र 2023-24 अप्रैल मार्च के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने CCA की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने 2024-25 सत्र के लिए रबी की सभी फसलों का MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने 6 रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है। गेहूं का MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने IT मंत्रालय के साथ सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में बुधवार को 3 समझौते किए। ये कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। कंपनी ने मंत्रालय के साथ सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये प्रौद्योगिकियां भविष्य की तकनीक का आकार तय करेंगी। इनके जरिए अकादमिक, स्टार्टअप और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र में काफी अवसर उपलब्ध होंगे। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने मधुमेह के इलाज के लिए 3 निश्चित खुराकों वाली एक दवा पेश की। कंपनी का दावा है कि ये दवा टाइप 2 मधुमेह रोगियों में ग्लाइसेमिक को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। ग्लाइसेमिक से पता चलता है कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से खून में शर्करा की मात्रा किस अनुपात में बढ़ती है। ग्लेनमार्क ने इस दवा की कीमत 14 रुपये प्रति टेबलेट रखी है। इससे मधुमेह रोगियों के लिए इलाज की दैनिक लागत 30% तक कमी आने का दावा कंपनी ने किया है। हरित ऊर्जा में सक्रिय कंपनी रिन्यू ने बुधवार को कहा कि जलवायु शिक्षा स्कूलों में बिजली पहुंचाने और जल संरक्षण की दिशा में किए गए कंपनी के प्रयासों के तहत करीब 10 लाख लोगों को लाया जा चुका है। घरेलू कंपनी रिन्यू ने बयान में कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत चलाए गए उसके कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इनके जरिए समावेशी एवं समानता वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, लैंगिक समानता हासिल करने और समुदायों को किफायती, विश्वसनीय एवं टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच देने के लिए प्रयास किए गए। रिन्यू ने कहा कि उसने CSR कार्यक्रमों के तहत देश के 10 राज्यों में बीते दशक में करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। ये कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हरियाणा में चलाए गए हैं। सरकार को वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में 3 से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2017 में हुआ था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में COVID-19 महामारी की वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बुधवार को बताया, हमने प्रधानमंत्री से यहां प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। कुछ कंपनियां पहले ही सांकेतिक रूप से निवेश प्रतिबद्धता जता चुकी हैं, जिसकी घोषणा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दौरान की जाएगी। मंत्री ने कहा, रणनीतिक कारणों से चीन को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। सरकार ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित 7 देशों को 10,34,800 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी। विदेश मंत्रालय महानिदेशालय की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए किया जा सकता है। हालांकि भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरत के मद्देनजर सरकार उनके लिए गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति देती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।